حيا على الفلاح وهيا على الفلاح عجب فقرك لجماني أربعين كرب بلاك يا جواني الصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أفوض أمري إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال إن شاء الله کل سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا احیاء امر اہل بیت کے حوالے سے اس عنوان سے انشاءاللہ آج اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اپنی گفتگو کے آغاز میں پہلے مل کر اپنے مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے، السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النہار ولا جعلہ اللہ آخر الاحد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اتنی ہی بلند صلوات پڑھ دیں محمد اللہ۔ احیاء امر اہل بیت یعنی اہل بیت کے امر کو زندہ کرنا، یہ روایت تعبیر ماخوذ ہے متعدد روایتوں سے، مختلف روایتیں ہیں کہ جس کے اندر اس تعبیر کو استعمال کیا گیا ہے کہ فحیو امرنا ہمارے امر کو زندہ کرنا۔ ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، کل انشاءاللہ اس کو پھر میں نے کل آپ کی خدمت میں نے عرض کی تھی، انشاءاللہ جس پہ آگے گفتگو بڑھائیں گے کہ چھٹے امام سے یہ روایت ہے، امام نے فضیل سے یہ پوچھا کہ جو امام کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، امام نے فضیل سے سوال کیا کہ تجلسون و تحدثون، فضیل کیا ایسا ہوتا ہے کہ تم لوگ آپس میں بیٹھتے ہو، و تحدثون اور آپس میں وہ گفتگو کرتے ہو، کہ جو محرمانہ گفتگو ہے جو ہر جگہ نہیں کی جا سکتی۔ قال نعم جوئل تو فداک، مولا ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، یقیناً ہم ایسا کرتے ہیں۔ قال ان تلک المجالس احبها، کہ یہ جو مجلسیں ہیں جو تمہارا بیٹھنا ہے تو حدثون اور تمہارا آپس میں جو گفتگو کرنا ہے، میں تمہارے اس بیٹھنے کو تمہاری اس محفل کو محبوب رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا فحیو امرنا، کہ دیکھو اگر ایسا کرتے ہو تو پھر کوشش یہ کرو کہ ہمارے امر کو زندہ کرو۔ اور پھر فرمایا فرحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت کرے اس شخص پہ کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، مگر ایک اور میں آپ کی خدمت میں آٹھویں مولا سے ایک روایت اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ البتہ اس روایت کے اوپر گفتگو انشاءاللہ آج نہیں کریں گے، آج اسی پہ گفتگو کریں گے، لیکن بہرحال ایک مولا کا کلام ہے اور اس سے مرتبط ہے، اور انشاءاللہ آگے ہمیں اس کے اوپر گفتگو بھی کرنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے آغاز کرتے ہیں کہ رحم اللہ، خدا رحمت کرے اس شخص پہ کہ من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرنے والا ہے۔ جب مولا نے بیان کیا تو اس کے بعد پوچھنے والے نے سوال کیا کہ کیفا مولا، کیفا तो ये अमृत, आपका अमृत जो है ये कैसे जिंदा किया जा सकता है, कैसे ये जिंदा हो सकता है। और फिर मौलाना ने कहा कि हमारा अम्र जिंदा होना, और ये मिसदाक है कि यतअल्लम उलूमना, कि हमारा अम्र ऐसे जिंदा हो सकता है कि पहले जो हमारे उलूम हैं उन्हें याद करो, उन्हें सीखो, और उसके बाद इन्हें लोगों तक पहुंचाओ। यतअल्लमून, पहले इसको जो है सीखो और उसके बाद युअल्लिमून, उसको पहुंचाओ। कि अगर ऐसा होगा, फिर मौला फरमाते हैं कि लव अलमन्नासु महासिना कलामिना, अगर लोग हमारे कलाम की खूबसूरती को जान लें, लत्तबाउना, तो वो हमारी पैरवी करने लगेंगे। कि यहाँ इमाम ने आगे बढ़कर इंशाल्लाह इस पर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे कि ये अहियाए अम्र से इसका, लत्तबाउना से क्या ताल्लुक है पैरवी का और अहियाए अम्र से। कल आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का अम्र रिवायात की रोशनी में अगर देखें, ज़ियारत आशूरा के दो कलमात जो जुमले आपकी खिदमत में कल मैंने पेश किए, कि जिसके अंदर खुदा से हमने तलब ये किया कि परवरदिगार हमें ये रिज़्क़ अता करे कि मैं इमाम हुसैन के खून का बदला लेने वालों में शामिल हूँ, इस खून के बदले को तलब करने वालों में शामिल, उस इमाम के साथ के जो मंसूर हैं, जो हादी हैं, दो मकामात पे इस बात को ज़ियारत आशूरा के अंदर बयान किया गया। और ज़ियारत आशूरा आप जानते हैं कि हदीस कुदसी है, खुद खुदा का कलाम है, पाँचवें इमाम से नकल हुई है, लेकिन जब सिलसिला सनद आगे बढ़ता है तो ये खुदा तक पहुँचता है, ये हदीस कुदसी है। तो इन तमाम जब रिवायात की रोशनी में हम देखते हैं तो अहले बैत के अम्र का अहिया, यानी अहले बैत के अम्र का जिंदा करना, यानी वो हक जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से छीन लिया गया था, उस हक को वापस पलटाना। ये कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये जो खून का बदला है, ये भी खून का बदला दो तरीके का है। एक वो लोग के जो बराए रात इस जुर्म के अंदर जिनके हाथ रंगे हुए थे, कि जिनमें से तकरीबन अक्सरियत वो है कि जिसको जनाब मुख्तार ने जिसे कत्ल किया, लेकिन जो इसका हकीकी जो बदला है, इसका उसका हकीकी बदला ये है कि वो हक जो अपने महवर से हट गया है, जिसे हटा दिया गया है, खुदा लानत करे उन पे, लान जलमत को व अजालत कुम अन मरातबकुम अल्लती रत्तबकुम अल्लाह फीहा, खुदा लानत करे उन पर जिन्होंने आप पर जुल्म किया और आपको उन मकाम से हटा दिया जिस पर खुदा ने आपको रखा था। कि वो जितने मानवीय मकामात हैं उससे हटाया नहीं जा सकता, विलायत तकवीनी छीनी नहीं जा सकती, इल्म लदुन्नी छीना नहीं जा सकता, वो जिससे हटाया था वो क्या था, वही हुकूमत थी, यह हक हाकिमियत था जो खुदा ने फकत और फकत अहले बैत को दिया है, और उसके बाद उनको मिला है अहले बैत की गैबत में, कि जो अहले बैत की तरफ से मंसूस हैं, कि चाहे वो नाम लेकर जिनको नस्ब किया गया हो या वो के सिफात बताकर जिन्हें नस्ब किया गया हो। तारीखी जो इंतकाम है वो के जो हक हटा दिया गया है, इस हक को दोबारा इसके महवर के ऊपर वापस पलटाना है। और ये जो मजालिस हैं, इन मजालिस का कमाल भी ये है कि ये मजालिस हमें अपने ज़माने के इमाम की खिदमत तक पहुँचाए। कल मैंने आपकी खिदमत में एक मशहूर आलम दीन का जुमला पेश किया था कि ये सावल्ला हमें बकियतुल्ला तक पहुँचाए। क्या आप जानते हैं कि बहुत गहरा रब्त है जहूर में और इमाम हुसैन में। खुद ज़ियारत आशूरा के अंदर बहरहाल जो चीज़ें हैं वो तो आपके सामने हैं, उसके अलावा मुतअद्दिद हदीसें हैं। और एक हदीस इस तरीके से है कि एक दफ़ा पैगंबर हसनैन के साथ खेल रहे थे, इमाम हुसैन मौजूद थे, उम्मे सलमा ने इसको रिवायत की, एक दफ़ा पैगंबर की आंखों से आंसू बहना शुरू हुए, और उसके बाद जब सवाल किया गया तो आपने बताया कि ये मेरा बेटा है, इसको इतने जुल्म से मारा जाएगा। कई दफ़ा बहरहाल इसका तस्करा किया गया है, कई दफ़ा इसको आकर बताया गया, एक दफ़ा नहीं है, मुतअद्दिद मकामात पर इसका तस्करा किया गया है, मलाइका ने नाजिल होकर, जिब्राइल ने नाजिल होकर। लेकिन उसके बाद पैगंबर ने जिस तरीके से बयान किया, मफहूम उसका यह है कि तमाम मुसीबतें बर्दाश्त हैं इसलिए क्योंकि ज़हूर का रास्ता यही है, यानी जो इसका हासिल है इस कुर्बानी का वो है ज़हूर। इसीलिए आप जानते हैं कि जब आएंगे इमाम के प्रथम पे क्या लिखा होगा, या सारातिल हुसैन। इमाम के छह नारे हैं जिस तरीके से इमाम अपने आप को पहचानवाएंगे, जिनमें से चार जो है वो इमाम हुसैन से मुताल्लिक है। ये सबसे पहले जो आके कहेंगे या अहलुल आलम ए अहलुल आलम, ए दुनिया वालों जान लो मैं वो हूँ कि न जद्दियल हुसैन कद कतलू हो अच्छाना, मैं वो हूँ कि जिसके जद हुसैन को प्यासा शहीद कर दिया गया। वाला रमल बिला रासन तरफू हो और याना, और इस जल्दी हुई रेत पर जिसे बिला कफन छोड़ दिया गया। अब खुद इसके अंदर उलमा इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि खुद आप यहां पर देखें कि उस वक्त दुनिया के अंदर हुसैन का नाम कितना पहुंच चुका होगा कि जब भी तारुफ कराया जाता है तो उस शय से तारुफ कराया जाता है जो ज्यादा मारूफ हो। यानी हमेशा तारुफ उस चीज से होता है कि जो ज्यादा मानूस हो, जिसके बारे में ज्यादा जानते हो, वरना तारुफ नहीं है। या तारीफ भी, जब किसी चीज की एक्सप्लेनेशन दी जाती है, डिस्क्राइब किया जाता है, तो उसकी जो शर्तें हैं तारीफ की, उसमें से एक शर्त यह है कि वो चीज के जिसके डिस्क्राइब किया जा रहा है वो ज्यादा रोशन हो। अगर आप तारीफ करें और ज्यादा उसके अंदर और ज्यादा मुश्किल चीज बयान करें तो फिर वो तारीफ नहीं है। इसका मतलब ये कि उस वक्त तक इतना मेरे मौला का नाम दुनिया तक पहुंच चुका होगा, दुनिया इतनी आशना हो चुकी होगी कि इमाम जब आकर अपना तारुफ कराएंगे तो लोग फौरन जान लेंगे कि कौन। और खुदा इसके इंतजाम कर रहे हैं। आप खुद देखें कि ये 10-12 साल से ज्यादा पुराना फिनोमेना नहीं है जो अरबईन इस तरीके से हमें नजर आता है। ये 10-12 साल इराक के अंदर बहुत पुराना था। इराक के अंदर ये सिलसिला शायद उसी वक्त से चलता चला आ रहा है, कई सदियां पुराना सिलसिला है इराक के अंदर। लेकिन वो लोग जो उसके बाद अरबईन पर गए हैं, यानी इस सिलसिले से पहले जो लोग गए हैं, या वो लोग के जो काफिले लेकर जाते हैं, उनसे आप जाकर पूछें, ये 2008-09 से ज्यादा पुराना वाकया नहीं है ये। कि हम लोग इस वक्त ईरान के अंदर थे जब हमें वहां पर दावत दी गई थी आने की, तो आयतुल्लाह हकीम के दफ्तर से ये कहकर दावत आई थी कि इराक के अंदर एक ऐसी रस्म है कि जो अभी तक दुनिया ने देखी नहीं है, कि लोग पैदल जाते हैं और उन जाने वालों की इस तरीके से खिदमत की जाती है कि जो बेनजीर है। और उसके बाद हर मुल्क से 20 तालिब इल्म उन्होंने कहे थे, क्योंकि 20 तालिब इल्म हर मुल्क से आए, कि एक ऐसी चीज है कि जो बहरहाल बेमिसल है, आकर इसे देखें। लेकिन इस थोड़े से अरसे में आप देखें कि पूरे आलम इस्लाम में, बल्कि इससे बढ़कर अगर कहा जाए कि हर उस जगह पर कि जहां पर लोग आजादी को पसंद करते हैं, जो हुर्रियत चाहते हैं, जो आजाद मर्द बनकर जीना चाहते हैं, इन सब के दरमियान अरबईन किस तरीके से चमका है। खाली फकत शिया नहीं होते हैं, अहले सुन्नत भी होते हैं, फकत अहले सुन्नत नहीं होते, फकत मुसलमान नहीं होते, ईसाई भी होते हैं, मुतअद्दिद मजहबों के लोग वहां पर होते हैं। एक मशहूर शख्सियत, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, खुद मैंने उनसे सवाल किया कि फिलोसफी ऑफ रिलीजन में पीएचडी उनका, दुनिया की एक मशहूर यूनिवर्सिटी से, एक दुनिया का बड़ा दिमाग आए हुए थे अरबईन पे। मैंने उनसे सवाल किया कि आपने यहां पर क्या देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो उनका जवाब महफूज है, इस वक्त इंटरनेट पे जवाब उन्होंने ये दिया कि मैं यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व नहीं कर रहा, मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं इसमें हिस्सा लेने के लिए आया, क्योंकि ये जुल्म के मुकाबले में सबसे बड़ी वॉक, इसका पैगाम जो है वो जुल्म का मुकाबला। तो ये मजलिसें हमें यहां तक पहुंचाएं कि हम अपने जमाने के इमाम की खिदमत तक पहुंचे, हाजिर इमाम की खिदमत तक पहुंचे, वो इमाम पर जिसका मुतालबा, इमाम इस तरीके से हम पर भरोसा कर सकते हैं कि जैसे इमाम हुसैन अपने असहाब पर भरोसा करते थे। सबसे पहले मैं इसको अपने नफ्स के लिए बयान कर रहा हूं, मैं मुखातिब हूं, मेरा नफ्स है। इमाम ने जिस वक्त अपने असहाब से कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो मेरे सामने खड़े हो जाओ, इंसान खुद थोड़ी देर के लिए अपने आप से पूछे, क्या मैं इस मंजिल तक हूं, क्या मुझे शबो रोज में कितना ख्याल रहता है कि मेरे इमाम मुझसे क्या चाहते हैं, इमाम क्या चाहते हैं। इमाम के दो लकब हैं, इमाम का लकब एक है मुंतजर और एक है मुंतजर, दोनों इमाम के लकब हैं। मुंतजर वो कि जिसका इंतजार किया जाए, इमाम मुंतजर है क्योंकि सारी दुनिया उनका इंतजार कर रही है। लेकिन साथ साथ इमाम का एक और लकब भी है जो है मुंतजर, यानी वो कि जो खुद इंतजार कर रहा है। इमाम भी अपने असहाब का इंतजार कर रहे हैं, इमाम भी मुंतजर है अपने असहाब। उलमा इस तरीके से बयान करते हैं कि हमारे पास जहूर की कुछ निशानियां हैं और कुछ शराइत हैं। जो निशानियां हैं वो किसी के अख्तियार में नहीं है, लेकिन जो शराइत हैं उनको तहसील करना है, उनको हासिल करना है। वहां शराइत क्या है, शराइत यही है कि लोग अमादा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईमान के अंदर कोई कमी है खुदा ना खास्ता किसी किस्म की। यानी इमाम अभी अपने उस कमाल तक नहीं पहुंचे, उस जगह तक नहीं पहुंचे हैं कि जहां पर वो आकर इस दुनिया के ऊपर एक आलमी हुकूमत कायम कर सकें और उस आलमी हुकूमत को अदल व इंसाफ के साथ चला रहे हैं। यानी अभी एक ट्रेनिंग पीरियड है इमाम का नाउज़ुबिल्लाह जो चल रहा है, जब वो पूरा हो जाएगा तो इमाम आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इमाम के कमाल में, इमाम के परफेक्शन में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। कि तुलानी हदीस है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कि जब ये सारा वाक़या हुआ, अबू आमिर रिक्शा के जिसने ये सवाल किया बीबी से, बीबी को देखा कि उहद के शुहदा के कबूर के दरमियान शहजादी वहां पर मौजूद हैं और उनके लिए जिक्र पढ़ रही हैं, कि बीबी का तरीका यह था और ये खुद शहदा के कबूर पर जाना, कब्र पर जाना, ये खुद बीबी की सुन्नत है कि शहजादी वहाँ पर जाती थी, उहद के शहदा के कब्रों के ऊपर जाती थी। और उसके बाद उस मिट्टी से आपने अपने लिए एक तस्बीह बनाई थी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शहजादी की सुन्नत है। अब वो हम ये कहते हैं कि मैंने देखा कि उहद के शहदा के कबूर के दरमियान शहजादी मौजूद हैं और ये वाकया सारा हो चुका था। मैंने जाकर वहाँ पर जाकर शहजादी से ये सवाल किया, बीबी से सवाल किया कि क्या वाकयान पैगंबर ने अपने बाद किसी को तायीन नहीं किया था। तो बीबी ने इसका जवाब दिया कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम लोग गदीर पर मौजूद नहीं थे, अभी चंद महीने भी नहीं गुजरे हैं, क्या तुमने नहीं सुना, क्या यह खबर तुम तक नहीं पहुंची कि कैसे पैगंबर ने अबुल हसन को नाज़ किया था। उसके बाद ये रावी खुद जो रावी बयान करते हैं कि उसके बाद मैंने ये सवाल किया कि अगर ऐसा है और इतना शफाफ अगर नस्ब किया गया था तो फिर अली ने अपने हक के लिए कयाम क्यों नहीं किया, कि अगर शहजादी ना होती तो शायद कोई भी ये जवाब नहीं दे सकता था जो बीबी ने जवाब दिया। बीबी ने यहां पे पैगंबर से इस हदीस को नकल किया, इस हदीस को शहजादी ने बयान किया कि मसलुल इमाम मसलुल काबा इज तुअता वला तअती, मसलुल इमाम इमाम के मसल काबे की तरीके से है कि जिसकी तरफ जाया जाता है जो खुद किसी के पास नहीं जाता, तुअता वला तअती जिसके पास जाया जाता है वो नहीं आता। लेकिन यहां पे बहरहाल में एक और यहां पे सवाल आपकी खिदमत में पेश करूं कि देखिए खुद मौलाए कायनात ने जितना पैगंबर अकरम की तरफ तारीफ की थी, यानी पैगंबर की शान में जो जुमलात आपके मौजूद हैं उसकी जगह में, उसमें एक जगह आप फरमाते हैं कि पैगंबर के लिए कि पैगंबर तबीबुन दवार, पैगंबर ऐसे तबीब थे जो दवार थे, जो एक जगह पर नहीं बैठे रहते थे, इंतजार नहीं करते थे कि लोग उनके पास आए, बल्कि खुद ऐसे थे जो खुद मरीजों के पास जाते थे। कभी ताइफ में गए हैं, आप जानते हैं कि जब ताइफ आप तशरीफ लेके गए तो किस तरीके से आपके ऊपर पत्थर बरसाए गए, किस तरीके से आपके बदन अक़दस से खून जारी हो रहा था। तो एक तरफ तो हमें ये नजर आता है कि तबीब उन दवार, पैगंबर जो है वो तबीब दवार हैं, ऐसे तबीब हैं जो खुद मरीजों के पास जाता है, मुंतजर नहीं रहते। کہ لوگ یہاں پر آئیں, اور یہاں پر شہزادی یہ کہہ رہی ہیں کہ مثل الامام مثل الکعبہ, امام کی مثال کعبے کی ہے کہ جس کے پاس آیا جاتا ہے جو خود کسی کے پاس نہیں جاتا. اب اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو کیا یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا نہیں رہی؟ ایک طرف جو ہے وہ خود مریضوں کے پاس جا رہے ہیں, جو پیغمبر کی میراث ہے وہ آئی ہے سب کے پاس, امام اہل بیت کے پاس آئی ہے, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ امام نہیں جائیں گے, امام کعبے کے طریقے سے لوگوں کو آنا پڑے گا. تو کیا یہ کانٹرڈکٹری باتیں نہیں ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کانٹرڈکشن پایا نہیں جاتا, یہ دونوں باتیں صحیح ہیں, لیکن اپنے اپنے مقام کے لیے. جس وقت تک حق واضح نہیں ہے, صحیح اور غلط کا پتہ نہیں ہے, ہدایت پہنچی نہیں ہے, جب تک پیغمبر اور امام اور جو ان کے جانشین ہیں وہ انتظار نہیں کریں گے کہ کوئی آئے ہدایت لینے کے لیے, بلکہ خود جا کر ہدایت پہنچائیں گے. جب حق بات کو پہنچانا ہے, پیغام پہنچانا ہے, لوگ نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے, ہدایت کیا ہے, خود جائیں گے, انتظار نہیں کریں گے. لیکن جب حق واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے, اب صاحب حق کو حق دلانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے. اب یہاں پر امام نہیں کہیں گے کہ ہر حال میں میرے ساتھ آؤ, بلائیں گے ضرور کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, انی راحل مصبحا غدا, انشاءاللہ کل میں یہاں سے کوچ کر جاؤں گا. فمن کان باذلا فینا مہجتا, جو ہم میں اپنا خون جگر بہانا چاہے, وہ موطنا علی لقاء اللہ نفسا, اور اس نے اپنے رب سے ملاقات کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر لیا ہو, فلیرحل معنا, وہ ہمارے ساتھ چلے. عمومی دعوت تو ہے لیکن یہاں پر کسی کے پاس نہیں جائیں گے. اگر کوئی غلط فہمی ہو, کوئی بات واضح نہ ہو تو جائیں گے. بس اگر حق واضح ہو گیا ہے کہ یہ امام کا حق ہے, اس کے بعد اب یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے, اب یہ شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں آ کر. اب اگر یہاں پر لوگ نہیں آئیں گے تو اس کے بعد پھر امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قیام کرے, اور نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں آئیں گے کوئی خدا کیا, اس کا حساب نہیں ہے, اس کا حساب ہے. لیکن اس کے بغیر اگر لوگ نہیں آئے, یا مولانا نے کیا کہا تھا, لولا حضور الحاضر واتمام الحجہ بوجود الناصر, کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگ آ گئے ہوتے اور ناصروں کی وجہ سے مجھ پر حجت تمام ہو گئی ہوتی, تو میں کبھی بھی اس خلافت کو قبول نہ کرتا, کہ جب چوتھی دفعہ میں میرے مولا کو جب یہ خلافت ملی. یہاں پر لوگوں کی ذمہ داری یا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آمادگی کریں, ہم اپنی آمادگی کا اظہار کریں. اس حوالے سے, بس اس آمادگی کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فردی آمادگی کافی نہیں ہے. ایک فرد تنہائی میں آمادہ ہو, اکیلا آمادہ ہو, یہ کافی نہیں, بلکہ ضروری یہ ہے کہ ایک گروہ ہو, مومنین کی ایک تعداد ہو کہ جو آمادہ ہو. کیونکہ اگر ہم اس طریقے سے طول تاریخ کے اندر دیکھیں گے تو ہمیں بے شمار بڑی شخصیات نظر آئیں گی. فردی طور پر دیکھیں گے ایک فرد کی آمادگی تو بہت سارے ایسے افراد نظر آئیں گے, لیکن جب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا کوئی جماعت, کوئی گروہ ایسا ہے کہ جو گروہی طور پر آمادہ ہے, تو یہ ہمیں تاریخ کے اندر بہت کم نظر آتا ہے. فردی آمادگی کافی نہیں ہے, بلکہ آمادگی کی ضرورت ہے, کہ یہ آمادگی گروہی آمادگی. جو توقیع شریف ہے امام سے, توقی جانتے ہیں کہ وہ چیز کے جس کے اندر امام خود لکھ کے اور آخر میں اپنے خط سے لکھ کے بھیجے, آخر میں امام کا جو ہے وہ اس کے اندر دستخط ہوں. مشہور مولا کے جو توقی ہے, مولا اس میں فرماتے ہیں کہ ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته, اگر ہمارے شیعہ अला इज्तिमाइन मिनल कुलूब फिल वफा बिल अहद अलैहिम, अगर इनके कुलूब जमा हो जाते हमारी बात की वफा पर, लमा ताखर अनहुमुल युम्न बिल लिखाएना, तो फिर हमारी मुलाकात में इनके साथ देर ना होती। यहां पे भी ताकि किसी तरफ है कि इज्तिमाए कुलूब, कुलूब जमा हो जाए इसके ऊपर, हमारे अम्र के ऊपर कुलूब जमा हो जाए। ये अकेले अकेले अलग अलग होना काफी नहीं है। अल गारात एक किताब है कि जो अभी कई उलमा ने इसका तस्करा किया, इसलिए किताब पहले से भी मौजूद थी लेकिन इतनी मारूफ नहीं थी। शहीद कासिम सुलेमानी ने इसका तस्करा किया, फिर कई उलमा ने इसका तस्करा किया, उसकी वजह से ये किताब ज्यादा नाम जबानों पर इसका नाम आया। इसके अंदर मौला कायनात की जिंदगी के हालात उस वक्त के वाकयात है। इसे मौला फरमाते हैं, जनाब फरमाते हैं कि लव कान ली अल्फुन लकान ली फी हिम राए। क्या मतलब? फरमाते हैं कि अगर मेरे पास हजार लोग होते तो मैं इनके दरमियान कुछ कर सकता था। और उसके बाद पूरा सही है कि दो लोग आए थे कि दो रिश्तेदार थे, इमाम की खिदमत में आए, मौला ने उनके आने को कबूल किया, लेकिन मैंने मौला ने कहा कि ये दो लोग इस वक्त काफ़ी नहीं है। अगर मेरे पास हजार लोग होते तो लकान अली फीहिम राय, तो मैं इनके दरमियान अपनी बात को मनवा सकता था। और ये भी मुख्तलिफ वक्तों की बात है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है सख्त काम सख्त होता जाता है। अगर सही वक्त के ऊपर काम हो जाए, जिस वक्त मौला की खिलाफत जिस वक्त छीनी गई थी, अगर उस वक्त लोग जमा हो जाते तो बगैर किसी जंग और मुसीबत के ये अम्र ऐसा हो नहीं सकता था। खुद तारीख के अंदर है कि वो कि जिन्होंने हक छीना वो खुद ये कह रहे थे कि एक फितना था जिसके फितने को खुदा ने मिटा दिया। यानी खुद उन्हें यकीन नहीं था कि ये बात इतनी आसानी से लोग इसे कबूल कर लेंगे, क्योंकि अभी गदीर को गुजरे हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। लेकिन उस वक्त लोग नहीं आए, उसके बाद वो कबीला बनी असलम आया कि जो अपने हिस्से का बैतुल माल लेने आया था, उसके जरिए से बैयतें ली गई और उसके बाद बात सख्त तर होती गई। एक मकाम ऐसा मौला ने कहा, अगर सात लोग मेरे पास होते, सलमान मिकदार कंबर अबू दर जैसे, अगर सात लोग होते तो ये खिलाफत मुझसे, मेरा हक मुझसे छीना नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे ताखीर होती जाए, अगर वक्त गुजर जाए, सही वक्त फैसले का वक्त गुजर जाए, तो उसके बाद फिर चीजें मुश्किल होती चली जाती हैं। जिस वक्त उबैदुल्लाह, देखें ये तारीख की जो चीजें हैं दर हकीकत ये हमारे लिए दर्स है। इस आईने के अंदर इंसान अपने आप को देखे कि इंसान कहां पर खड़ा हुआ। अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद जिस वक्त आया है कूफे के अंदर, दारुल अमारा के अंदर 20 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे खुद उस कसर के अंदर, उस महल के अंदर, और भेस बदल कर आया था, अपने हुज्जे से आ नहीं सकता था। इस तरीके से मोमिनीन के हाथ में था कूफा। लेकिन जब उस सही वक्त के ऊपर कयाम नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने क्यों कयाम नहीं किया आप जानते हैं कि कुछ ने कयाम इसलिए नहीं किया, कहा कि ये अभी सफीर हुसैन है, जब तक खुद इमाम नहीं आएंगे तो हम कयाम नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर जब वो वहां पर पहुंचा, और फिर उसके बाद जब वो अफवाहें फैलाना शुरू की गई, जो अफवाहें फैलाई गई उसके बाद लोग छटते चले गए, उसकी हुकूमत मजबूत होती चली गई, यहां तक कि अब उसके बाद कूफे के ऊपर कब्जा करना, कूफे को इख्तियार में लेना, उसकी कीमत बढ़ती चली गई। बहुत बहरहाल संगीन जुमला है, लेकिन रहबर मौज़म के खुद ये जुमला है कि जो आपने फरमाया कि वो लोग के जो कूफे से करबला आए थे, वही लोग के जो करबला में आकर शहीद हुए इमाम के रकाब में, इतने ही लोग अगर कूफे के अंदर मुस्लिम का साथ दे देते तो करबला का रुख कुछ और होता। अलबत्त उनके मकाम की अजमत खुद हमारे पास सनदें मौजूद हैं, रिवायत के अंदर चीज़ें मौजूद हैं कि खुद इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ सलवात पढ़ते नाम के साथ के ऊपर एक सही वक्त के ऊपर क़याम करना, या कोई भी इकदाम अगर सही वक्त बर वक्त अगर इकदाम किया जाए बहुत कम कीमत में, बहुत थोड़ी सी कीमत देकर हक को पलटाया जा सकता है, बातिल का रास्ता रोका जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती चली जाए वैसे वैसे सख्त होता जाता है काम। खुद 1857 की जंग जाके तारीख का मुताला करें कि किस तरीके से नजदीक थी कामयाबी और क्या किया गया, कुछ लोगों की खयानतें, और उसके बाद फिर क्या 150 साल से ज्यादा की, तकरीबन 150 साल की गुलामी। ये सारी चीजें जो तारीखी मोड़ है, खुद रैपर फरमाते हैं कि बास मौके ऐसे होते हैं कि जिन्हें कहा जाता है ये तारीखी मोड़ है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो चीज वजूद में आती है, ये जो फैसला करने से जो सूरत हाल सामने आती है, अब इसको बदलना आसान नहीं होगा। यानी इंसान जिंदगी के अंदर, कौमें बहुत सारी जिंदगी के अंदर फैसले करती हैं, हमेशा बहरहाल फैसले की घड़ी रहती है, फैसले की घड़ी, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे हैं कि जिसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है हिस्ट्री के अंदर, कि उस वक्त जो फैसला किया जाता है अब ये आगे तक चलेगा, ये लंबे अरसे तक चलेगा। जिस तरीके से उस वक्त एक टर्निंग पॉइंट था, जिस वक्त ये आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से कॉलोनियलिज्म का जिस वक्त आगाज हो रहा था, वो एक टर्निंग पॉइंट था तारीख के अंदर। अगर बर्र सगीर के अंदर ये कॉलोनियलिज्म ना आता तो बर्र सगीर की तारीख कुछ और होती, ये जो मुल्क जिसमें हम रह रहे हैं इसकी जो सूरत हाल है ये कुछ और होती, एक मुकम्मल एक और सूरत हाल होती। लेकिन कॉलोनियलिज्म का रास्ता नहीं रोका गया, ये कॉलोनियलिज्म आया उसकी वजह से फिर जो सूरत हाल आई अब उसको बदलना इतना आसान नहीं था। इसी तरीके से आज दोबारा हम एक तारीखी मोड़ से गुजर रहे हैं, दुनिया के अंदर इस वक्त एक हक की तलब है। जो पुराने निजामात थे उससे मायूसी पाई जाती है, अगर आप उनके मुफक्किरों की बात करें तो इस वक्त वो लिबरलिज्म से कैपिटलिज्म से मायूस नजर आते हैं। अब से 30 साल 40 साल पहले ऐसी सूरत हाल नहीं थी, आज दुनिया के अंदर एक हक की तलाश है। ये हमारे लिए वाकया एक सुनहरी मौका है कि अगर आज हमने दुनिया के सामने हक पेश किया, इस तारीखी मोड़ पर अगर हमने अपना सही किरदार अदा किया, तो बहुत मुमकिन है कि वो जो जहूर का रास्ता है वो बहुत नजदीक हो जाए। लेकिन इस बात अगर गफलत की, कोताही की, और दोबारा बातिल को मजबूत होने दिया, तो उसके बाद फिर अल्लाह जाने न जाने कितनी सदियों बाद दोबारा ये मौका हमें मिले। तौकी मैं आपकी खिदमत में कंप्लीट कर दूं, उसको पूरी इबारत आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि वला अन्ना शियाना वफ़क़हुम अल्लाह लिताअत अला इज्तिमाइन मिन अल-क़ुलूब बिल फिल वफा बिल अहद अलैहिम, कि अगर ऐसा होता कि उनके कुलूब जमा हो जाते उस अहद की वफा पर जो उनके ऊपर है, लमा ताखर अनहुमुल युम बिलिकाइना, तो उनके लिए सआदत जो हमारी मुलाकात की सआदत है उससे वो महरूम न रहते, उसमें ताकीर ना होती। वला तअज्जलत लहुमुस सआदतु बिमुशाहिदतना अला हक़्क़िल मारिफ़ति वसिदक़िहा मिनहुम बिना, और अगर ऐसा होता तो उनकी जो सआदत थी हमें ज़ियारत के जरिए से वो सआदत और बढ़ जाती। फमा यह अनहम इल्ला, अब यहाँ पे मेरे मौला फरमाते हैं कि वो क्या चीज़ है कि जो हमें और हमारे शियों के दरमियान दूरी का सबब बन रही है। फमा यह बसना अनहम, हमें उनसे कोई चीज रोकती नहीं है, इल्ला मा यत्तसलु बिना मिम्मा नकरहु वला नुखसिरहु मिनहुम, मगर ये कि हम तक उनसे वो पहुंचता है कि जिसे हम पसंद नहीं करते। ये जो अमाल हैं, ये जो इनके अमाल हैं, जो चीज़ें जो हमारे शिया जो अंजाम देते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, जो गफलतें करते हैं, ये वो चीज़ है कि जो उन्हें हम तक पहुँचने से रोक देती है। बहरहाल अहम चीज़ ये है कि हम लोग इज्तिमाए कुलूब मिलकर इमाम के लिए आमादा हूँ। इसलिए जब भी आप देखते हैं हमारे पास जितनी तरबियत दीनी है, दीन के अंदर जितनी भी तरबियत का अंदाज है, जब भी आप देखें तो आपको उसके अंदर एक इज्तिमाइयत नजर आएगी। यानी वो चीजें कि जो फर्दी चीजें भी हैं उनको भी अगर आप देखेंगे तो आपको उसके अंदर एक कलेक्टिवनेस नजर आएगी। नमाज जमात रोजाना का कोशिश ये करो कि जो रोजाना की वाजिब नमाजें इन्हें नमाज जमात के साथ अंजाम दो, इन नमाज को जमात के साथ पढ़ो। फिर उसके बाद जो बहरहाल सवाब लिखे गए हैं कि अगर 10 लोग जमा हो जाएं तो इतना सवाब है कि इसको जिनो इंस जिसको लिख नहीं सकते। बहरहाल सवाब अपनी जगह, लेकिन जो चीज यहाँ पर बयान की जा रही है कि जिस कदर हो सके, जिस हद तक हो सके, नमाज को जमात के साथ अदा करो ताकि दिलों के अंदर वो मोहब्बत पैदा हो सके, वो हमदर्दी, वो हमदिली पैदा हो सके, वो अपनाइयत पैदा हो सके। सफों के अंदर ये बात महबूब है कि इतने नजदीक खड़े हों कि शाने से शाना मिल रहा हो। ये किस लिए है? ये तमाम चीजें इसलिए अलामत इस बात की हैं कि मोमिनीन के दिलों को नजदीक आना है। पैगंबर अकरम अगर कोई 2 दिन तक मस्जिद नहीं आता था तो आप उसके घर चले जाते थे या किसी को उसके घर भिजवाते थे कि क्या वजह है, वो क्यों नहीं आ रहा, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका राबता मोमिनीन से टूट जाए। आपस में जितनी इस तरीके की बातें की गई हैं कि देखो खबरदार अपने मोमिन भाई के लिए दिल के अंदर किसी किस्म का कोई सुए जन न लेकर आना, 70-70 तावीले लेकर आओ उसके फेल के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये बदगुमानी तुम दोनों को आपस में एक दूसरे से दूर कर दे। इसके अलावा जब दुआओं की बात आई, कहा कि अगर अकेले भी नमाज पढ़ रहे हो, अकेले भी दुआ मांग रहे हो, तो देखो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी निगाहें फकत तुम्हारी शख्सियत तक हो, तुम तक महदूद हो जाएं। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना, परवरदिगार हमें, मुझे नहीं, आतिना फिद्दुनिया हसना परवरदिगार, फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। सब जगह जम के सीगे, कई जगह कुरान के अंदर मुतअद्दिद जगह पर ये दुआ तकरार हुई है। या खुद जिस वक्त हम सूरह हम पढ़ते हैं, वह नअबुद, हम बारे अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, हर जगह पर जम के सीगे हैं। माह मुबारक के अंदर वो जो दुआ है, जो मशहूर माह मुबारक के रमजान की जो दुआएं हैं, नमाज के बाद जो दुआ है जिसके अंदर आप दुआ मांगते हैं कि अपने मरीज के लिए दुआ मांगो, लेकिन ये क्या बात हुई कि मोमिन फकत अपने मरीज के लिए दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इश्फ कुल्ल मरीज, परवरदिगार जितने मरीज हैं सबको शिफा अता कर। अपने कर्ज के लिए दुआ मांगो, लेकिन अल्लाहुम्मा अख्ज़ कहीं ना कुल्ल मदयून, परवरदिगार जितने भी मकरूज हैं परवरदिगार उन सब के कर्ज को अदा कर दे। ये जो सारी दुआएं हैं, ये सारी इबादतें हैं, ये सब हमें इस इज्तिमाइयत की तरफ पहुंचा रही है कि हमने मिलकर अपने इमाम के साथ खड़ा होना है। फर्दी अकेले तनहा खड़ा होना, फर्दी तैयारी काफी काफी नहीं है। इमाम के साथ जितने अफराद थे वो इसी तरीके के तरबियत याफ्ता थे। अब्दुल्ला इब्ने जुंदब शागिर्द हैं इमाम के। इमाम एक दफ़ा उनको किसी ने देखा कि तवाफ़ कर रहे हैं, और तवाफ़ करते हुए एक ख़ास हालत है, एक ख़ास जो है वो मानवी हालत है, आंखों से आंसू जारी हैं। उसके बाद वो जो रावी था उसने कहा कि मैंने पसंद नहीं किया कि मैं जाऊं इस वक्त जाके उनकी इस हालत के अंदर मुखिल हूँ, ये हालत जो है इसको ख़राब करूँ। लेकिन उसके बाद मैं खिदमत में गया और मैंने कहा कि जिंदा क्या तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह कैसी खूबसूरत हालत थी, क्या मानवी हालत थी कि जिसमें तुम तवाफ कर रहे थे, तुमने खुदा से क्या मांगा? तो कहा कि मैंने खुदा से कुछ भी अपने लिए नहीं मांगा, क्योंकि मैंने अपने मौला से ये सुना है कि मन दा लिअकीय बिज़हर अल-ग़ैब, कि जो अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है, बिज़हर अल-ग़ैब जब वहां पर है नहीं, वो उसके पीछे दुआ करता है, नूर दिया मिनल अर्श, तो अर्श से फिर यह सदा दी जाती है, लका मिसलो अल्फ ज़ैफ अल्फ अल्फ मिसले ही अल्फ ज़ैफ मिसले, अर्श उसके लिए सदा दी जाती है कि तुम्हारे खुद तुम्हारे लिए ये जो तुमने इसके लिए तलब किया है 1,00,000 मरतबा यही चीजें तुम्हारे लिए मौजूद है। अलबत्ता ये थोड़ी सी इबारत के फर्क के साथ अहले सुन्नत के अंदर भी ये रिवायत, यानी ये मुत्तफ़िक़ुन अलैह रिवायत है जो पाई जाती है, कहीं पर यह है कि इस आयत इस तरीके से बयान की गई है कि जो कुछ तुमने तलब किया है वो सब का सब तुम्हारे लिए भी है, और कहीं पर यह है कि कई मरतबा उससे 1,00,000 गुना मरतबा ज्यादा है तुम्हारे लिए जो तुमने अपने भाई के लिए तलब किया है। ऐसा नहीं है अल्लाह के पास कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आप सबके लिए मांगे तो अल्लाह जो है वो भूल जाएगा। अगर मैं ये कहूँगा अल्लाहुम्मा शफ़िकुल्ला मरीज, तो अल्लाह उन तमाम मरीजों में कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो मरीज़ है उसकी बारी सबसे आखिरी में आए, इसलिए मैं फ़कत अपनी बात पहुँचाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं है, वो खुदा है, वो सारी चीज़ें उसकी नज़र में आए, कोई चीज़ उससे छुपी नहीं है, कोई चीज़ उस पर पिनहान नहीं है। लेकिन खुदा ये चाहता है कि देखो तुम्हारी नज़र के अंदर ये खुदगर्ज़ी नहीं होनी चाहिए, मोमिनीन के अंदर एक अपनाइयत होनी चाहिए, जिस तरीके से हदीसों के अंदर है कि एक जिस्म का हिस्सा है, एक बदन का हिस्सा है, कि अगर बदन का एक हिस्सा बीमार हो जाए तो बाकी सारे हिस्से बुखार में और सब बेदारी में उसकी हमराही करते हैं। वो जो बुखार आता है पूरा जिस्म उसमें बुखार में मुब्तला हो जाता है, और सब बेदारी जब इंसान सो नहीं पाता, अगर जैसे किसी एक हिस्से के अंदर दर्द है तो पूरा जिस्म उसके साथ जाग रहा होगा। बहुत ज्यादा ताकीद है कि मोमिनीन के दिलों के अंदर आपने सुना भी होगा इदखाले सुरूर की, मोमिनीन के दिलों को खुश करो। इसका जो एक आम तसव्वुर है वो ये है कि बरहाल कोई ऐसी बातें करें कि जिससे लोग खुश हो जाएं, शाद हो जाएं, मतलब कोई ऐसी लतीफ बात कोई कही जाए, लेकिन इसका हकीकी मतलब यह है कि उनकी परेशानियों को दूर करो, उनके मुश्किलात को दूर करो, उनके लिए काम करो। छठे इमाम की खिदमत में एक शख्स आया कि ये था यानी किशावर्स जो किसान होते हैं, किसान था, इमाम की खिदमत में आया और आकर उसने कहा कि अहवास से मौला मैं आया हूँ। अहवास साहब की खिदमत में पहुंचा और कहा कि मेरे ऊपर जो टैक्स लगाया गया है 10,000 दिरहम का टैक्स लगाया गया है, ये टैक्स बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरे ऊपर इतना टैक्स लगाया गया, और मेरी जो तवान है, मेरी जो इस्तेदाद है माली, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर उसके बाद मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, मेरी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मौला ने कहा क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि वो जो अहवास का वाली है वो आपका चाहने वाला है, मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ उसे लिख कर दे दें ताकि ये जो मेरा टैक्स है, जो मालियात है, माफ़ हो जाए। इमाम ने कागज़ और कलम उठाया और उसके बाद सिर्फ फकत दो लफ्ज़ लिखे, सुर्राखाक या सुर्रकल्लाह, तुम अपने भाई को खुश करो, अल्लाह तुम्हें खुश करे। जब वो इमाम का ये नामा लेकर गया, उस वाली के पास पहुंचा, उसने जब इस नामे को खोला, इमाम की तहरीर को पहचाना, अब इसके अंदर बड़ा नुकात और भी हैं कि किस तरीके से इमाम का रब्ता नेटवर्क कैसे था, कि वो जो वहाँ रहता था वो इमाम का चाहने वाला था, फिर भी मनसब पे था, इमाम की तहरीर को भी पहचानता था, वो सारे ये जो चीज़ें हैं ये अपनी जगह पर, कि हमारा तसव्वुर ये है कि उसके बाद इमाम हुसैन के बाद तमाम आइम्मा जो थे वो फ़कत घर नशीन थे, अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे, कोई काम नहीं था। ऐसा नहीं है, ये जो अम्र अहले बैत के जिसे हमें ज़िंदा करने के लिए कहा जा रहा है, सबसे पहले अहले बैत मुसलसल इसकी कोशिश करते रहे। बहरहाल इमाम की जब इस तहरीर को देखा, इस तहरीर को इमाम की आंखों से लगाया और उसके बाद ये कहा कि ये जो किताब मंगवाई वो जो चीज़ें, बहरहाल उसको देखा, कहा कि ये तुम्हारे लिए लिख दिया गया है, अब ये इससे मिट नहीं सकता, इसे यहाँ से हटाया नहीं जा सकता, रिकॉर्ड हो चुका है, अब ये तुम्हारी जगह पर इसको मैं खुद इसको अदा कर दूंगा। और उसके बाद जब ये कहा तो वो खुश हुआ, तो उसने हवाल किया वाली ने कि हल सरर, तो क्या मैंने तुम्हें खुशहाल किया? उसने कहा कि वल्लाह वाकई मुझे खुशहाल किया। उसके बाद कहा कि देखो तुम्हारा जो अगले साल का भी जो टैक्स है, जो मालियात है, वो भी तुम अदा नहीं करना, मैं अदा करूंगा। अपनी सवाल किया कि क्या मैंने तुम्हें खुशहाल किया? मेरे मौला ने क्या कहा था? अपने मोमिन भाई को यसुर्राखाक, अपने भाई को खुशहाल करो, यसुर्रकल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुशहाल करेगा। उसके बाद कहा कि देखो तुम यहाँ पर आए हो, ये जो कालीन बिछा हुआ है यहाँ पर तुमने लाकर मेरे मौला का नामा, मेरे मौला का पैगाम मुझ तक पहुँचाया है, ये फ़र्श तुम अपने हमरा ले जाओ। फिर ये सवाल किया क्या तुम्हें खुशहाल किया? उसके बाद कहा कि एक मरकब, कि तुम इतनी दूर से आए हो, देखिए उस वक्त जो मरकब है आप जानते हैं कि वो जानवर है कि जिस पर सवारी की जाती है, लेकिन अगर आज के दौर में देखें तो आज के मरकब कुछ और है, उस वक्त जदीद मरकब उसके हवाले किया अपने माल से, बैतुल माल से नहीं, कि ये मरकब जिस पे तुम वापस जाओ। और उसके बाद यही सवाल करते रहे कि क्या मैंने तुम्हें खुशहाल किया, और उसके बाद कहा कि देखो अगर फिर कोई मुश्किल हो तो मेरे पास आना। उसी साल या बहरहाल अगले साल ईशा साहब इमाम की खिदमत में पहुंचा तो मौला से कहा कि मौला आपके चाहने वाले ने तो कमाल कर दिया, और फिर बताना शुरू किया कि मौला क्या 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 उसने मुझे दिया। जैसे जैसे वो बताता जा रहा था मौला का चेहरा खिलता जा रहा था, यहाँ तक कि आखिर में कहने लगा मौला आप ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे उसने ये सब मुझे नहीं बल्कि आपको दिया है। मौला ने कहा तुम क्या बात कर रहे हो, इससे पहले कि उसने तुम्हें खुशहाल किया उसने अल्लाह और उसके रसूल को खुशहाल किया। सलवात पढ़ दें अहले बैत के साथ। अगर माशरा इस जगह तक पहुंच जाए तो और भी बहरहाल पांचवें छठे वहां से जैसे इंशाल्लाह अगर फुर्सत हुई तो मैं पेश करूंगा। अगर जब लोगों ने आकर कहा कि मौला कयाम करें तो फिर आपने कुछ सवाल किए कि क्या तुम्हारे ऐसा होता है। मोमिनीन के कुलूब अगर इस तरीके से एक हो जाए, गोया ये बुनियान मरसूस सी सर पिलाई हुई दीवार है और इमाम की आमादगी के लिए इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो उसके बाद फिर इस आमर के अंदर यानी जहूर के अंदर ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि शराइत में से यही एक आमादगी पाई जाती है। लोग आमादा हों एक दूसरे के साथ मिलकर जमातन गुरुहन सफन, जैसे कुरान की आयत में आमादा हों अपने इमाम के, जैसे कि इमाम के असहाब आमादा थे, एक साथ आमादा थे अपने जमाने के इमाम के। अलबत्ता आपस में भी एक दूसरे के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर रहे थे। ये मोहब्बत ये हमदिली ये वहां पर पाई जाती थी। और वो लोग के बहरहाल के जो शोहदा के वाकयात पढ़ते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं, वो वसीयतें पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि ये चीज़ वहां पर भी इसकी झलक नजर आती है कि कैसे एक दूसरे के ऊपर अपनी जान निसार करने पर आमादा, लेकिन सब मिलकर अपने इमाम की खिदमत में। जनाब नाफे से ये बात नकल हुई है कि मैंने शब आशूर तारीकी में देखा कि कोई शख्स जा रहा है, एक साए को देखा। क्या मैं पीछे पीछे चला कि देखूं कि कौन है, जब मैं गया तो मैंने देखा कि खुद इमाम है। इमाम मुतवज्जे हो, इमाम ने कहा नाफे तुम हो? मौला ने बुलाया और नाफे के हाथ को थाम लिया। नाफे के इस तरीके से कि नाफे के हाथ को इमाम ने थामा हुआ था, इमाम नाफे को लेकर आगे बढ़े और दूर एक मकाम दिखा के कहा कि देखो नाफे ये जो देख रहे हो ये जो दो पहाड़ियां हैं इसके पीछे कोई दुश्मन नहीं है, रात की तारीकी है, जाना चाहते हो तो चले जाओ। नाफे ये कहते हैं जब मेरे मौला ने जाने का कहा, मुझे एहसास हुआ कि मौला जाने का कह रहे हैं, कहा मौला मैं आपको छोड़ के चला जाऊं। इस जिंदगी के लिए जो वैसे ही खत्म हो जाने वाली है। कबरा मौला के साथ मैं वापस आया, जब वापस खैमों की तरफ आया मौला ने कहा मैं इसलिए देख रहा था कि खैमे इसके पुश्त कैसी है, कहीं ऐसा ना हो कि कल दुश्मन पीछे से हमला कर सके। जब वापस खैमों की तरफ आए तो इस तरीके से कि मौला का के हाथ में मेरा हाथ था, मौला ने देखा कि शहजादी दर खैमा पर है। जब मौला ने ये देखा तो मेरा हाथ छोड़ दिया और फौरन बहन की तरफ बढ़े। नाफे कहते हैं मैं सुनना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहरहाल मेरे कानों में ये आवाज आई कि शहजादी ने कहा भैया क्या आपने इनका इम्तिहान ले लिया है? शहजादी का ये खौफ वजह है कि जब भी कोई लश्कर आता था, कोई सवार आता था तो शहजादी यही पूछती थी कि भैया क्या आपका कोई चाहने वाला आया है? कितने मुंतजर थी शहजादी, लेकिन हर दफा ही जवाब मिलता था कि नहीं बहन कोई हमारा नहीं आया है। खौफ है कहीं ऐसा ना हो,
ये भी कल साथ छोड़ जाए ना, फिर जल्दी सुधा रहा न गया है वो में गया। हबीब को बुलाया कहा हबीब अजीब बदला है, हुसैन की बहन को हम पर एतमाद नहीं है। हबीब ने अस्हाब को जमा किया, अस्हाब को जमा करके शहजादी की खिदमत में आए पुश्त खैबा, वहां पर आकर आवाज दी कि अगर मौला इजाजत दे तो अभी हम दुश्मन के ऊपर हमला कर दे। कितना इत्मीनान हुआ होगा ना शहजादी को ये देखकर कि थोड़े से हैं मगर कितने बावफा हैं। और जब रोजे आशूर की सारी खबरें शरीकत और हुसैन है ना, एक एक चीज की खबर शहजादी तक पहुंचती होगी, जब सईद की वफा की खबर पहुंची होगी तो शहजादी का दिल कैसा बड़ा होगा। मेरे भाई के चाहने वाले कैसे हैं कि तीर चल रहे होते हैं मगर उनके कदम डगमगाते नहीं है, कितना शहजादी को मान होगा। लेकिन जब शाम गरीबा में जब फौजों ने हमला किया होगा तो शहजादी कभी को देखती होगी, कभी दाएं देखती होगी कभी बाएं देखती होगी, शहजादी को वो सारे परवाने नजर आते होंगे जो कल तक वफाओं का ऐलान कर रहे थे। अगर अहले बैत शहजादी को याद आए होंगे, अगर अब्बास याद आए होंगे तो शहजादी है, शरीकतुल हुसैन है, किसी के हक में जफा नहीं हो सकती। अगर शहजादी ने अब्बास को याद किया होगा तो हतमन जौन को भी याद किया होगा, हबीब को भी याद किया होगा। अरे हबीब आज देखो हुसैन के हरम तनहा है। जब ये काफिला चला, मैं तवील मसाइब करने का आदि नहीं हूँ लेकिन कैसे मसाइब है, जब ये काफिला चलने लगा होगा 11 मुहर्रम या 12 मुहर्रम की तारीख थी, शहजादी ने जब सारी बीबियों को सवार कराया, मकातिल ने लिखा शहजादी ने कहा था खबरदार कोई लहीन आगे ना बढ़े मैं खुद सवार कराऊंगी। शहजादी ने सबको सवार कराया, एक वक्त वो आया कि बस जब दोनों बहने हैं, बहन से कहा बहन अब तुम भी सवार हो जाओ, बहन को सवार कराया, अब ज़ैनब तन्हा है, अब तन्हाई का आलम है, ज़ैनब किसे बुलाए। उन्होंने ने लिखा ये आल अल्लाह है, खुदा इजाजत नहीं दे सकता कोई नजिस हाथ यहाँ तक पहुंचे, मलाइका नाजिल हुए, जिब्राइल ने रकाब को थामा, मिकाइल ने बाजू पकड़ा, शहजादी पे कजावा उठ।
अल्लाह ने बोला है रब्बा मिस्वाले मात्र में आशा।